ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के आविर्भाव या इसके किसी भी रूप को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन देशों को अलग थलग करना चाहिए जो आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं, सुरक्षित पनाह देते हैं और उनके कारनामों को माफ कर देते हैं। ये टिप्पणियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कजाकिस्तान के अस्ताना में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में की। प्रधानमंत्री ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मूल लक्ष्यों में से एक आतंकवाद से निपटने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पर काबू पाने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण और भर्ती का दृढ़ता से मुकाबला किया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं में कट्टरपंथ के प्रसार को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार और मंगलवार को रूस की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को जाएंगे। दोनों नेताओं का परस्पर हित के समसामयिक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया भी जाएंगे। पिछले 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये पहली यात्रा होगी। श्री मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मॉस्को और वियना में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पहले शपथ ग्रहण रविवार को होना था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि 2025 तक विश्व अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में पहले भारतीय के पहुंचने का साक्षी बनेगा। उन्होंने कहा कि चार अंतरिक्ष यात्रियों में तीन ग्रुप कैप्टन और एक विंग कमांडर को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुना गया है। समुद्र के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर डॉ सिंह ने कहा कि भारत के गहरे समुद्र के अभियान में 2025 तक तीन भारतीयों को भेजा जाएगा। केंद्र ने आज राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत मानक और नियामक ढांचे के विकास के लिए परीक्षण सुविधाओं, अवसंरचना और संस्थागत समर्थन के वित्त पोषण के लिए दिशा निर्देश जारी किए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि ये योजना वित्त वर्ष 2025-26 तक 200 करोड़ रुपए के कुल बजट आवंटन के साथ कार्यान्वित की जाएगी। ये योजना हरित हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव की मूल्य श्रृंखला में घटकों, प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के लिए मौजूदा परीक्षण सुविधाओं में अंतराल की पहचान में मदद करेंगी। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से कक्षा 3 और 6 में नई पाठ्यपुस्तकें लाई जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाठ्यपुस्तकों की तैयारी का कार्य अंतिम चरण में है और कक्षा 3 और 6 की 9 पाठ्यपुस्तकें पहले से ही उपलब्ध हैं। शेष 8 पाठ्यपुस्तकें बहुत जल्द उपलब्ध होंगी। असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सेना असम के धेमाजी जिले के शिवगुड़ी और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के मेर गांव में बाढ़ राहत कार्यों में शामिल है। दोनों राज्य 29 जून से लगातार वर्षा से प्रभावित हैं। सेना ने अस्थायी आश्रय स्थल बनाकर बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता प्रदान की है। मौसम विभाग ने 4 से 5 दिनों के लिए पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में बहुत तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज दक्षिण गुजरात में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली में अपने आवास पर T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम का स्वागत किया। मुंबई में भारतीय टीम विजय परेड में शामिल है। टीम का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद हैं। लंदन में विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में यूकी भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। एक अन्य मैच में एन श्रीराम बालाजी और इंग्लैंड के ल्यूक जॉनसन पहले दौर में हारकर बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।